Okay guys, we are live now. My name is Faizan and I am a technology enthusiast.
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ.
और आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं टेक लॉग पॉडकास्ट नंबर 10. और आज हमारे जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. आज हमारे साथ एक साइंसदान मौजूद हैं. उनका मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराता चलूँ. अमना खान हमारे साथ मौजूद होंगी आज. और इन्होंने MSc किया फिजिक्स के अंदर IIT रुड़की से. इंडिया से हैं ये. और इन्होंने फिर PhD ज्वाइन की TU डार्मस्टर्ट जर्मनी से. और अपनी PhD ये अपने डिपार्टमेंट की यंगेस्ट PhD थी. और उसके बाद इन्हें जो है वो पोस्ट डॉक के लिए US जाना पड़ा. और वहाँ पर ये BNL के अंदर BNL लेबॉरेटरीज के अंदर पार्टिकल एक्सेलरेटर के ऊपर काम कर रही हैं. और वहाँ भी ये एक्सेलरेटर फिजिसिस्ट हैं. तो आमना खान अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप ऐड कर सकती हैं. डॉक्टर आमना खान.
ओके थैंक यू. पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में आपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो काफ़ी सही है. तो आई थिंक सो करेक्ट है. किसी को नहीं पता BNL वो है ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी. यहाँ की DOE डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी US की वहाँ पे लेबोरेटरी है. वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ नेशनल सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स 2 के अपग्रेड पे.
ज्यादा हो गया लग रहा है.
चलिए ऐसा ही लगता है जैसे ना वो हॉलीवुड की मूवीज होती है. कोई आफत आने वाली होती है और वो एक साइंटिस्ट आती है कोट पहन के, मैं इसको जो सॉल्व करूंगी.
नहीं जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना तो कुछ ऐसे ऐसे जुमले बोलना शुरू कर दो, ऐसे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दो, किसी की नहीं समझ में आए.
कुछ किसी को समझ ना आए. एग्जैक्टली.
तो आमना खान ये मतलब कैसे ख्याल आया इतनी पढ़ाई करने का? लोग बोलते चलो यार मैट्रिक कर ली बस काम हो गया. फिर कुछ लोग फिर एक जमाना आया कि इंटर कर ली चलो इससे ज्यादा नहीं पढ़ना. फिर बैचलर्स पास हो गई, MSc कर लिया, मेरी तो बस हो गई सही है. उसके बाद फिर PhD और PhD के बाद फिर पोस्ट डॉक भी. मतलब कहाँ से मिली इतनी मोटिवेशन और वो क्या स्टार्टिंग पॉइंट था आपका?
ओके मतलब अच्छा क्वेश्चन है. वैसे मुझे भी नहीं पता इसका आंसर मैं क्यों पढ़ रही हूँ इतना. पर ठीक है. लाइक एक्चुअली मैं ना मेरी सारी स्कूलिंग है गवर्नमेंट स्कूल से. तो वहाँ पे हमारी जो साइंस की टीचर थी वो एक्चुअली क्या करते थे, वो आते थे दे देते थे बुक और सो जाती थी और बोलती थी पढ़ो एक जाना उठ के. ठीक है. तो मुझे लगता था यार मतलब साइंस इतना अच्छा सब्जेक्ट है और टीचर क्या कर रही है ये हमारी. तो और उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी हमारी मैथ्स की टीचर जो कि इतनी अच्छी टीचर. मतलब अभी वो मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा से. लाइक वो हमेशा बोलती थी कि भाई मतलब पढ़ो जितना हो सकता है पढ़ो. लाइक और ये लाइक एजुकेशन सिर्फ बुक्स वाला ही नहीं, वो हमेशा मॉरल वैल्यूज एथिक्स वैल्यूज सब सिखाती थी. तो उसको लेते हुए ठीक है काउंसलिंग हुई स्कूल में. वो आते हैं कि भाई क्या बनना चाहते हो, मैंने उनको बोला जाके साइंटिस्ट बनना चाहते हो. बंदी मेरे पे हंस पड़ी. वो बोली पता भी है साइंटिस्ट क्या करते हैं? मैं कि नहीं वही तो नहीं पता, वही तो पूछने आई हूँ क्या करते हैं. तो फिर उसने बोला कि 5 साइंटिस्ट का नाम बताओ इंडिया के. तो सबसे पहला नाम तो हमारे वही सर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आता. उनके लिए तो मतलब सारा इंडिया ही उनसे इंस्पायर होता है. तो वो मेरा मतलब इंस्पिरेशनल पॉइंट था. उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि भाई PhD तो करना ही करना है. तो आगे फिजिक्स तो मतलब हमेशा से मैथ्स में अच्छे थे और साइंस में इंटरेस्ट था. तो फिजिक्स एक ऑब्वियस आंसर था कि उसी फील्ड में जाना है.
तो पॉइंट जो यहाँ पर समझने का है वो ये कि अगर बचपन से ही लोग बच्चों की काउंसलिंग की जाए इस मामले में, शरी क्या बोलना चाहेंगे?
नहीं यार बचपन से काउंसलिंग की बात नहीं है. मतलब इंटरेस्ट भी एक चीज़ है लेकिन एक अजीब सी बात होती है ना. मतलब पाकिस्तान और इंडिया में दोनों की बात एक साथ ही करूँगा तो वरना मसला हो जाएगा.
एक ही है भाई.
एक ही है. नहीं तो मसला सबसे बड़ा ये है कि फिजिक्स को साइंस को कोई इतना सीरियस नहीं लेता. वो ये कहता है कि यार नहीं इंजीनियरिंग है या तो डॉक्टरी है.
हमारे ना
ये तो है
पॉइंट ये है कि लोगों को लगता है साइंस में आगे जॉब्स नहीं है.
बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि उनको ये तो...
लाइफ तो अच्छी वाली लाइफ होगी. ये नहीं है कि भाई बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा. बट ठीक है एक पैशन भी होता है. तो हमारे पास ये लोग ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं करते. पता ही नहीं अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है. ये नहीं है कि साइंस पढ़ के तुम कंपनीज में जॉब नहीं कर सकते. ये नहीं है कि साइंस पढ़ के तुम किसी नेशनल लैब में नहीं काम कर सकते. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरेट मतलब सिंपल वाले डॉक्टर मेडिकल वाले डॉक्टर कि वो बहुत स्टेप है, इजी गोइंग पाथ है. लोग जस्ट फॉलो करेंगे दूसरों के फुटस्टेप्स एंड इजी वहां पे पहुंच जाएंगे. बस इतनी सी बात है कि हमारे लोग नहीं जाते हैं उसमें.
सही. तो आमना खान ये तो बातें हो गई आपकी मोटिवेशन की कि आपको मोटिवेशन किस तरीके से मिली. मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एक्सेलरेटर फिजिक्स, मतलब एक तो फिजिक्स और उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सेलरेटर फिजिक्स, मतलब कैसे
तो
एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को?
अपने कॉलेज टाइम पे मैंने काफी चीजें एक्सप्लोर की. पहले मैं मैथ्स में, लाइक आई सेड, मैथ्स में अच्छी थी, तो मैथमेटिकल फिजिक्स ट्राई किया, ठीक है. उसके बाद मैंने क्वांटम, जो सब लोग करते हैं कि भाई बहुत फैंसी है तुम्हारा क्वांटम आ गया, तो आई वुड वांट टू डू क्वांटम, तो क्वांटम में ट्राई किया, इंटर्नशिप किया अलग अलग. फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मैं मास्टर्स पे जाने वाली थी, और दूसरी बात यह कि इंडिया में भी एक्सेलरेटर फिजिक्स इतनी नहीं है, तो हमारे एक फैकल्टी आए थे, तो उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया एक्सेलरेटर फिजिक्स, तो उन्होंने दिखाया कि भाई वहाँ पे हमारे इंडिया में एक सेंटर है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, वो वहाँ पे लेके गए. तो वहाँ पे जाके मतलब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिकल एक्सेलरेटर देखा था, वहाँ का टूर किया, तो दैट वाज द पॉइंट कि आई वांट टू डू एक्सेलरेटर फिजिक्स. क्योंकि एक्सेलरेटर फिजिक्स में क्या है, तुम डिजाइन करते हो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को, फिर उसकी स्टडी करते हो कि तुम उसको चलाना कैसे है, फिर तुम उसका ऑपरेट करते हो, तो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ फील्ड्स.
मेरे जैसे बंदे के लिए जो अभी अभी जो है ना, मतलब पता ही नहीं है पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या, मतलब होता क्या है ये, मुझे नहीं पता. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटर तो मुझे वो पता है, बाइक का एक्सेलरेटर.
तो वही चीज हम क्या है, जब बाइक का एक्सेलरेटर है तो तुम बाइक को एक्सेलरेट करने के लिए करते हो, पार्टिकल एक्सेलरेटर में सेम चीज हम करते हैं पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए.
किस किस्म के पार्टिकल्स?
तो हर किस्म के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, हैवी आयन है, मतलब ठीक है, हर तरह का पार्टिकल. तो उसमें तुम पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्या कर रहे हो, बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एनर्जी. तो इसको एक सिंपल एग्जांपल ले लो, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भरी, अगर रेस्ट में है वो, तो उसको तुम कन्वर्ट करते हो, अगर थ्रो करोगे सीधा तो उसका क्या है, आप अगर नीचे गिराते हो तो उसकी ग्रेविटेशनल मतलब एनर्जी कन्वर्ट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. तो सिमिलरली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में आप क्या करते हो कि पार्टिकल्स को किक देते हो एक्सटर्नली और उनको एक्सेलरेट करते हो ताकि आप उसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए उनको यूज कर पाओ. वैसे तो यूजलेस है, तो यूज करने के लिए उन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर डिजाइन करते हैं. तो
आपने किक मूवी देखी है क्या?
चलो
उसकी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोगों को लगता है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स वही बना दिए इन्होंने, मिलियन डॉलर लगाते और उसमें चलता चलाता आम जनता का क्या फायदा. मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये
है, टैक्स का पैसा लगा हुआ है उससे पार्टिकल एक्सेलरेटर चल रहा है, उसको क्या फायदा है? मैं पूछता हूं, क्या फायदा?
हाँ, तो पहला फायदा तो यही है कि हम भाई फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं. आम जनता यही बोलेगी कि लोग भूखे मर रहे हैं, तुम बोल रहे हो फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है.
अच्छा पहले ये तो बताए फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है. या तो लोग बोले कि ये फंडामेंटल रिसर्च का क्या मतलब है.
फंडामेंटल रिसर्च है कि हम यूनिवर्स को पढ़ना चाहते हैं कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, हम कितनी नॉलेज है हमें अपने यूनिवर्स की, तो है वो रिसर्च बोलते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लोगों को पता कि दुनिया में 30,000 से ज्यादा पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं, और ये सब ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े कोई एक्सेलरेटर है, छोटे छोटे एक्सेलरेटर्स भी हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है. जो अभी सबसे ज्यादा टॉपिक चल रहा है जिसपे सब लोग काम करने पे लगे हुए हैं वो है मेडिकल एक्सेलरेटर्स. क्योंकि देखो आप रेडिएशन जितने हो गए हमारे, तो कैंसर तो भाई बहुत आम है, लाइक हम सुनते हैं कि उसको कैंसर हो गया, उसको हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं, बट फिर भी इतने इफेक्टिव नहीं है. अगर हम ट्रीट भी करते हैं उसके बाद भी साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसपे बहुत सारा काम चल रहा है. तो उसके लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स यूज करोगे कि कितने एरिया को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें कवर करना है. और उसके अलावा हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है डिफेंस में है, ठीक है. तो दूसरा है सेफ्टी के लिए, आप एयरपोर्ट पे यूज कर सकते हो. अभी एक्सरेज यूज करते हैं, तो अभी उसके अलावा भी हम पार्टिकल, छोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स को यूज कर सकते हैं. और आपका लगेज स्कैन करने के लिए, जैसे अभी हम हैंड लगेज होता है उसको स्कैन करते हैं, तो वो लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जो जेल है एंड जो हमारे पास अगर लिक्विड है, तो वो सब निकलवाते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास जेल है इसको निकालो, अलग निकालो. तो अभी अगर हम उसके लिए एक प्रोटॉन बीम या इलेक्ट्रॉन बीम यूज करें, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको बैग खोलना ही नहीं पड़ेगा, उसको डायरेक्टली स्कैन कर देंगे, उसकी 3D इमेज बनाएंगे वो, जो कि रियल टाइम में होगी, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है. लाइक ये मतलब विजुअली एग्जांपल्स हैं. उसके बाद पार्टिकल एक्सेलरेटर्स म्यूजियम्स में यूज होते हैं, तो बहुत सारे यूज हैं इस चीज के. और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप पार्टिकल एक्सेलरेटर को एफिशिएंट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है तो वो लेके आते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो टेक्नोलॉजी. सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेटर के लिए ही काम नहीं आएगी, वो काफी जगह और भी यूज कर सकते हैं हम उसे.
एग्जैक्टली. तो इस चीज की एनालॉजी अगर मैं देना चाहूँ आसान लफ्जों के अंदर, तो मैं इसको स्पेस प्रोग्राम्स जो होते हैं उनसे जो है वो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार जमीन के ऊपर आपकी जमीन खराब हो रही है तो उसको ठीक करो, सही है. आपके पास क्या बोलते हैं भूख से लोग मर रहे हैं, आप उसको जो है वो क्या बोलते हैं एड्रेस करें उस मसले को. लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं. आज जो हम घर पे बैठे बैठे ऊबर मंगवा लेते हैं, घर पे बैठे बैठे खाना मंगवा लेते हैं, जीपीएस जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से हमारे पास आया. जो LCDs हैं वो हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन की वजह से आई. और जो हमारे पास बच्चों के जो होते हैं ना क्या बोलते हैं खाने जिसके अंदर मल्टी विटामिन और सारे न्यूट्रिशन के अंदर रहते हैं, तो वो एक्चुअली डिज़ाइन किए गए थे एस्ट्रोनॉट्स के लिए. तो अगर इस चीज़ को इसी चीज़ के साथ एनालॉजी ली जाए कि पार्टिकल फिजिक्स के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स चलाने की पैसे नहीं है, उससे जो एक्सप्लोरेशन हो रही है उससे जो नई नई चीज़ें निकल रही, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट निकला नया, सही है, तो ये सब चीज़ें उसी के अंदर ही काउंट होती हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आई होप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. तो आमना खान, क्या प्लान है आपका? कि आपने मुझे एक दफ़ा एक बात डिस्कशन चल रही थी, आपने मुझे बताया कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, और आपने मुझे बोला कि मैं बुक लिखूंगी पार्टिकल एक्सेलरेटर फॉर किड्स. वो क्या सीन है आप उसके
तो बारे में? सीन था कि मतलब मैं हमेशा से एजुकेशन को बहुत वैल्यू देती हूँ. मतलब मेरे को लगता है कि एजुकेशन बहुत लोगों की जिंदगी सुधार सकती है, लाइक मेंटली, वैसे सोशली, सब हर पार्ट में. और वो एजुकेशन स्टार्ट होती है बच्चे से. लाइक आप बच्चे को पॉसिबिलिटीज बताओ कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी है. लाइक अभी स्पेस पे इतनी सारी बुक्स आती हैं किड्स के लिए. इवन आपने एग्जांपल दिया, तो स्पेस पे लोग बहुत सारी अभी लिखने लग गए हैं. अभी एटलीस्ट हमारे देसी लोगों को इतना ज्यादा नहीं है, तो गोरो लोगों के बच्चों के पास तो होती हैं. अगर आप चाहो थर्ड फोर्थ के वहां पे पढ़ी होगी कुछ ना कुछ. तो इसी तरह मेरा मन है कि एक्सेलरेटर फिजिक्स, लाइक उनको ये तो नहीं बताऊंगी कि ये एक्सेलरेटर फिजिक्स क्या है, बट उनको ये बताएं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं, कैसे हम उनको डिजाइन कर सकते हैं, जब तुम्हें क्या एक वो चाहिए, लाइक मोटिवेशन चाहिए उस चीज को परस्यू करने के लिए. तो उसके लिए मेरा मन है कि एक सिंपल सी जस्ट ऐसे ड्राइंग्स, कार्टून. मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, तो कोई आर्टिस्ट मिलेगा तो उसके साथ बैठ के वो कर सकती हूँ कि पार्टिकल एक्सेलरेटर्स डिजाइन करके हम एक छोटा सा उसको बुक टाइप वो कर दें, कवर कर दें. तो वो चीज है, मतलब मेरा हमेशा से मन है. तो आप जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में उसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कैसे वर्क करता है बच्चों को. तो हम अगर एक स्केल ले लें, लेट से, ठीक है, स्केल जो पड़ा ही रहता है ना मेजर करने के लिए, हमारे पास वो नहीं आते छोटे छोटे, बचपन में हमारे पास मैग्नेट्स होते थे छोटे छोटे के साथ ऐसे खेलते रहते थे, वही मैग्नेट्स यूज कर सकते हैं हम उसको लीनियर एक्सेलरेटर, मतलब सीधा एक्सेलरेटर बनाने के लिए घर पे. तो उनको यूज करो, और जो साइकिल में वो होती है बॉल्स, बॉल बियरिंग्स छोटी छोटी ऐसे सिल्वर बॉल की तरह लगती है, तो उनको भी आप वो स्केल पे वो मैग्नेट्स लगाए जो हमारे पास घर पे आते हैं कुछ कुछ डिस्टेंस पे, और आप उनपे दो दो बॉल्स चिपका दो आगे, और पीछे से जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है स्केल पे वहां पे बॉल पे आप एकदम से पुश करो, तो जो लास्ट में एंड में बॉल होगा वो जाएगा स्पीड अप होके. तो वो क्या है, आप ट्रांसफर कर रहे हो फर्स्ट वाली बॉल से एनर्जी, वो एंड तक ट्रांसफर होता जा रहा है. तो सिमिलरली आप पार्टिकल एक्सेलरेटर में क्या करते हो, स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हो और उनको किक देते रहते हो बाहर से एक्सटर्नली, मैग्नेट से या फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से. तो आप किक करके उनको पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एक्सेलरेट करते हो पार्टिकल्स को. तो वो एक मतलब एनालॉगी है, ये चीज बच्चों को हम बता सकते हैं कि जो चीज हमारे घर पे है उसको यूज करके आप एक छोटा सा पार्टिकल एक्सेलरेटर बना सकते हो एज अ टॉय. तो वो मतलब उसके लिए इंस्पिरेशन है कि भाई वो बताया जाए लोगों को.
सही. तो इस तरीके से मैग्नेट की अपनी बचपन की कहानी बताता हूँ आप लोगों को. छोटे छोटे जो खिलौने होते थे जिनमें मोटरें होती थी, मैं उन खिलौनों से नहीं खेलता था, उनको तोड़ के मोटर निकाल ली, मोटर से खेला. अब मोटर चल रही है वो छोटे वाले सेल से, अब कीड़ा काटा दिमाग का, मैंने बोला देखते ही क्या करते हैं जरा क्या होता है जरा, अगर मैं उसको मेन पावर में दे दूं 220 वोल्ट में, सही है। तो हमने उठाई वो मोटर 220 वोल्ट में लगा दी, एक पटाखा बोला पटा, और उसके बाद जो है घर का ब्रेकर जो है वो डाउन हो गया और हमें पता ही नहीं चला कि क्या करें भाई, लाइट बंद हो गई। अच्छा कहानी वहां तक नहीं, अब्बू आए, अब्बू ने जरा चंपा प्लेटी करवाई थोड़ी मेरी मेरी, सही है। उसके बाद फिर मैंने उस वक्त भी मेरे जो कीड़ा ना वो दिमाग में कि क्या मोटर के साथ क्या हुआ, उसको खोला देखा तो वो मैग्नेट जो था वो रबड़ बन चुका था, और वो एक्सपीरियंस मुझे याद रहेगी, और मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना वो अच्छी नहीं लगती।
अच्छा यहाँ पे ना एक अजीब सी चीज है, जैसे फैजान अभी थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था, वैसे तो ये बहुत बकवास करता रहता है इस पॉडकास्ट के पीछे कि ये तुम लोग फिजिक्स वालों ने सारा फंड खा लिया है, तो ये तो बस ये पॉडकास्ट के चक्कर में ये फिजिक्स वालों को बहुत ऊपर रख रहा है अभी, वरना तो ये कोई इज्जत नहीं देता फिजिक्स वालों को, अभी एक्सप्लोरेशन की बातें कर रहा है। इलॉन मस्क जो भाई जो है ना वो फैशन में आ गए, तो जो फैशन में चीज है ना तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस देखना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता हूं कि आप इस पे कुछ ना कुछ कमेंट करें, कि ये तो बात होगी ना एक्सप्लोरेशन की, वो एक्सप्लोरेशन होगी उससे कोई नया आइडिया आएगा, फिर उस आइडिया को कहीं ना कहीं हम यूज करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक जनरल आइडिया।
मेरे जैसा कोई इंजीनियर जो है उसका क्रेडिट ले जाएगा,
उसका क्रेडिट नहीं, फिर वो पीछे बकवास करेगा कि फिजिक्स की क्या अहमियत है, सही है, जैसे ये करता रहता। लेकिन अब लोगों को ये कैसे समझाएं, एज अ फिजिसिस्ट जैसे आप फिजिसिस्ट हैं, तो लोगों को ये कैसे समझाएं कि फिजिक्स डायरेक्टली टेक्नोलॉजी से डील कर रही है, वो टेक्नोलॉजी को शेप कर रही है, आने वाली टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली शेप कर रही है,
गेम चेंज कर रही है, पूरा
गेम चेंज कर रही है।
तो ये एक्चुअली में आप देखो ना, लाइक जो भी हम काम कर रहे हैं, जो मैं पार्टिकल एक्सीलेटर पर काम कर रही हूँ, ये आइडिया आज से 90-100 साल पहले पुराना है, लेट से, ठीक है, ये मतलब पुरानी चीज होती है क्योंकि आइडियाज पहले से ही है, बट आपकी टेक्नोलॉजी वीक है कि अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है।
तो टेक्नोलॉजी है, चीप नहीं है,
चीप नहीं है, नहीं वो भी है, कुछ लोग के पास पैसा है तब भी बना नहीं पा रहे हैं वो, वैसे चलो ये बात नहीं है, दोनों चीज जरूरी है एक्चुअली में, टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, फिजिक्स भी जरूरी है,
कुछ लोगों के पास पैसा है, कुछ लोगों के पास टैलेंट है।
तो बात यही है कि हाँ, फिजिक्स एक फंडामेंटल लाइक ब्रांच है साइंस की, जो जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं, तो वो वन ऑफ द लाइक बैकबोन है हर चीज की। अब मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आया वो फिजिक्स से आया, तो वो पढ़ना और लिखना, लाइक अभी एक हम इसमें मैथमेटिशियन को बता दे, वो बोलेगा तुम फिजिक्स वाले भी क्या कर दोगे मैथ्स के बिना। तो बात वही है कि सब लोग वो इंटरकनेक्टेड है, तो बस हर चीज का यही है कि फिजिक्स का इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक अगर आप उसको परस्यू करना चाहें तो वो बहुत इंटरेस्ट, और बात यह है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना, वो मजा ही है। ऐसे तो इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी काफी है, फिजिक्स मुझे शुरू से शौक था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अलावा।
ये झूठ बोलना है, ये झूठ बोलना है। मैं
बोलूंगी फिजिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा टीचर बहुत बुरा है, तब भी वैसे मैं सीखा ही, ठीक है, मेरी टीचर बुरी थी तो मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि मैं पढ़ूं उसको, मैं भी मैंने ज्यादा घर पे आके पढ़ा, साइंस को देखती रहती थी कि हाँ इसको कैसे एक्सप्लोर करें, तो या तो एक्सट्रीमली बुरा होना चाहिए या एक्सट्रीमली अच्छा होना चाहिए।
सही सही सही। तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चों को शुरू से जो है वो चमाटे वमाटे करवाओ, उनको फिजिक्स पढ़ाओ।
चमाटे नहीं, मतलब ठीक है वही, मतलब उनको मोटिवेट करो।
मोटिवेट करो भाई, चाइल्ड अब्यूज नहीं करना आप लोगों ने।
नहीं तो मोटिवेट कैसे करे, मतलब एक बच्चा है उसको टिकटॉक बनाना है आज के बच्चे को, उसको फिजिक्स के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे?
उसको वही, उसको फिजिक्स के इतने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स, हम मतलब घर पे इतने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि इसने मोटर को तोड़ा, उसको ठीक है करंट दे दिया और देखा मैग्नेट ये बन गया, मतलब ये तो थोड़ा सा डेंजरस है छोटे बच्चे के लिए, बट इन अदर केस हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मतलब भाई बहुत।
ये स्टीफन हॉकिंग कौन है भाई?
शायान है हमारा, शायान बोले, शायान बोल रहा है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट, दे यूज्ड टू कॉल मी स्टीफन हॉकिंग,
ब्लैक
होल,
स्टीफन हॉकिंग के नाम पे तो ब्लैक होल ही याद आता है। तो देखो भाई, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में आप होल भी बना सकते हो। स्टीफन हॉकिंग ने बोला था कि भाई टाइम मशीन का जो फ्यूचर है वो सिर्फ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं।
ये डिस्कशन बड़ी अच्छी आपने स्टार्ट कर दी है। ये जो ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई थी, क्या लगता है आपको, क्या क्या मतलब इसके मतलब फवायद और नुकसान हो सकते हैं, क्या 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 हमें पढ़ने को मिलेगा इससे नेचर के बारे में?
इससे नेचर में, क्योंकि अभी हमारे यूनिवर्स का हमें लेस देन 4% पता है, जो यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग है अभी पूरे दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उनको लगा के हमें सिर्फ लेस देन 4% पता है, और वो भी अपने वाले का सिर्फ। अभी अगर तो और डायमेंशंस हैं, हायर डायमेंशंस है, पैरेलल यूनिवर्स है, वी रियली डोंट नो।
यूनिवर्स वाली बीम आ गई यहाँ तो,
ठीक है, तो उसको लेके तो ब्लैक होल एक छोटा सा स्टेप है कि हम उस चीज को समझ पाए, क्योंकि ब्लैक होल हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ब्लैक होल वो है जहाँ जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के कोसों दूर है, तो वो
यहाँ जो है वो हमारी पूरी यूथ जो है वो दूसरे ब्लैक होल में लगी हुई है, उसको चाहिए कि वो अच्छा ही वाले
कौन से होल में लगी हुई है,
वो सही वाले ब्लैक होल पे कॉन्सेंट्रेट करे तो ज्यादा अच्छा है।
हाँ, तो वो इंस्पिरेशन देने की जरूरत है लोग एक्चुअली में वही है, साइंस को इंटरेस्टिंगली तरीके से बताया जाए तो हर कोई उसको, टेक्नोलॉजी के लिए क्यों भागते हैं हम, लाइक लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बहुत फैंसी फैंसी चीजें आप बना के दिखाते हो ना, आपके ये चीज है मतलब दिखती है, तो अगर आपको वो चीजें साइंस में भी दिखेंगी, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, उनको खुद से एक्सप्लोर करके देखो, वो क्यूरियोसिटी लेके आओ, तो वो सब दिखेगा। बस एक पॉइंट आउट करने की जरूरत होती है, आई गेस बच्चा अपने आप ही उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप शुरू से उसको टिकटॉक का वीडियो बनाने मतलब बोलोगे तो वो टिकटॉकर बनेगा, तो टिकटॉकर बनना भी बड़ी बात मतलब बुरी बात नहीं है अगर आप अच्छा कर रहे हो उसमें, बट बात वही है कि एक एग्जाम्पल है, तो आप जिसका जैसा उसको दिमाग में डालोगे कीड़ा, तो वैसा ही जाएगा बच्चे के दिमाग में।
अच्छा, टिकटॉक पे फिजिक्स की वीडियो बनाओ ना आप।
हाँ, टिकटॉक पे फिजिक्स, मैं इतनी वो नहीं हूँ, मतलब टैलेंटेड वैसे बन सकता है, अच्छा आइडिया है।
अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, बुला दिए शरी तुमने, तमीज इंसान हो, मैं ये बोल रहा था कि हाँ, एक जो ब्लैक होल पैरेलल यूनिवर्स, ये तो बहुत ऊपर की चीजें हो गई ना, हम लोग बचपन में सुना करते थे कि एक बिग बैंग जो होगा और जो है ना अर्थ जो है वो तबाह हो जाएगी, और
ये एक्चुअली में 2012 में सर्न में एक्सपेरिमेंट हुआ।
एग्जैक्टली, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, बिग लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, आपने सर्न में भी काम किया है, आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
तो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर वन ऑफ द जो हमारा सबसे आज तक एक्सेलरेटर मतलब बनाया गया, तो 28 किलोमीटर उसका 27-28 किलोमीटर सर्कमफेरेंस है, सर्कुलर मशीन है वो। तो एक्चुअली में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होना था, कोलाइडर में क्या करते हैं, यहाँ पे इधर से एक पार्टिकल का बीम लेके आते हो, दूसरी साइड से लेके आते हो, उनको सुपरइम्पोज करते हो, मतलब उनका एक सुपरइम्पोज करके, क्योंकि डबल हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। ऐसा ही है जैसे एक ट्रेन जा रहा है इधर डायरेक्शन से उधर डायरेक्शन से, आप इस ट्रेन में बैठे हो, आपको लगेगा कि दूसरा ट्रेन डबल स्पीड से जा रहा है, वो एक्चुअली में ऐड होता जाता है। तो सिमिलरली पार्टिकल एक्सेलरेटर में उस पार्टिकल्स के फ्रेम में आप जाके देखोगे कि डबल स्पीड हो गया, ठीक है। तो उसको स्टडी करने के लिए वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर डिजाइन किया गया था। तो हमारी जनता ने, जो हमारी मीडिया है, जो हमारी कॉमन जनता, उन्होंने बोला कि बिग बैंग होगा, वही ये सब हो गया, ठीक है। तो
अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये भी होता ना कि पता नहीं अजीब अजीब तरह की थ्योरी सुनता था उस वक्त में 2011-2012 में, कि एक घोस्ट पार्टिकल आ गया जिसने क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है उसको, ब्रेक कर दिया, समथिंग लाइक
स्पीड ऑफ लाइट को,
स्पीड ऑफ
जो भी है भाई, मैं इतना फिजिकल नहीं हूँ।
भाई वो तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी एक बंदे ने जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेन चला दी थी।
हमारे एक्चुअली में आप मानोगे नहीं, हमारे एक प्रोफेसर ने चला दी थी, हमारे ने दिया स्पीड ऑफ लाइट से, उसे वो ऐसे करते थे एनर्जी को उसे इक्विवेलेंट कर रहे थे लाइक फोर्स के, तो ही वाज लाइक बियॉन्ड द साइंस।
गलती से मिस्टेक हो गई। तो एक थ्योरी ये भी थी कि वो हाइड्रोन कोलाइडर जो है उसके जब बिग बैंग होगा तो अर्थ की जो है ना एक रोटेशन जो है वो रुक जाएगी और फिर अर्थ जो है वो रिवर्स घूमेगी, सही है, तो सूरज जो है वो क्या बोलते हैं मशिक के बजाय मगरिब से निकल जाएगा और कयामत आ जाएगी।
थिंग इज कि हमारी ये मीडिया जब ऐसे जो फेक न्यूज आती है, अभी तो व्हाट्सएप आ गया और खराब है, तो वो सब चीजें होती हैं, पर दुनिया को वही बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो सारे पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं एक्चुअली अंडरग्राउंड ही होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला है जो नेशनल सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स है, ये भी नीचे है, उसके अलावा स्लैक स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर है, वो आई थिंक सो जो सबसे बड़ा लीनियर एक्सीलरेटर था वही बनाया गया है, तो वो सबवे के नीचे से जाता है लाइक उनके, तो लोगों को पता नहीं है कि नीचे से पार्टिकल एक्सेलेरेटर जा रहे हैं, बस वो जो एक आध न्यूज आ जाती है तो उसकी थ्योरीज बन जाती हैं, इतना सा डिफरेंस है।
अच्छा यहाँ पे ना चले, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जो आपका पीएचडी था वो भी पार्टिकल एक्सेलेरेटर मतलब एक्सेलेरेटर फिजिक्स में था, तो उसमें आपका क्या मेन रिसर्च टॉपिक था?
तो उसमें मेरा मेन रिसर्च था, लाइक हम लोग सुनते आते हैं पार्टिकल एक्सेलेरेटर, जैसे ये मैंने अभी लार्ज हैड्रन कोलाइडर बोला, ये एक सर्कुलर मशीन था, ठीक है, तो उसमें सर्कल में पार्टिकल्स घुमाते हो आप। तो दूसरा जो स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सेलेरेटर, उसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में घुमाते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में आप उनको एक्सेलरेट करते हो। तो मेरा जो पीएचडी टॉपिक था वो था एनर्जी रिकवरी लीनियर एक्सेलेरेटर पे, उसमें क्या करते हो आप, दोनों के स्पेसिफिकेशन उठाते हो, लीनियर वाला भी और सर्कुलर वाला भी, दोनों के अप पॉइंट्स लेते हो, प्लस पॉइंट्स लेते हो, तो उनको ज्वाइन करके आप बनाते हो एक एक्सेलेरेटर जिसमें आप उन दोनों की क्वालिटीज लेके आओ, तो उसको हम ग्रीन एक्सेलरेटर बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इक्विवेलेंट है जो हमारी ये कार्स आती है ना,
ग्रीन एनर्जी, बेसिकली
ग्रीन एनर्जी, तो हाइब्रिड कार्स की तरह, जहां पे आप एक एनर्जी को दूसरी में कन्वर्ट करके पहले सेव करते हो, ठीक है, फिर उसको यूज करते हो। तो सिमिलरली इसमें क्या करते थे हम लोग, के एनर्जी एक बार पार्टिकल्स को देते हो, फिर उनसे लेते हो, फिर दोबारा उनको ट्रांसफर करते हो, ताकि आपका जो सर्कल है वो सही बना रहे और आपको जो बीम क्वालिटी है वो अच्छी मिले,
मतलब आप मॉड्यूलेशन क्रिएट कर रहे हैं,
मॉड्यूलेशन क्रिएट कर रहे हैं एग्जैक्टली,
ताकि आपका एवरेज एवरेज सेम रहे और आपकी जो इंस्टेंट एनर्जी है वो कम रहे,
कम रहे, यस यस, और आपकी जो क्वालिटी है बीम की वो अच्छी रहे। क्योंकि सर्कुलर मशीन में क्या होगा, आप एक पार्टिकल को घुमाए जा रहे हो तो उसमें रेडिएट करेगा वो एनर्जी, डिसिपेट होगी। लेट से जैसे हम चलते जा रहे हैं, एक बॉल को ऐसे ही फेंक दिया, फ्लोर पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से कभी ना कभी रुकेगी, अदरवाइज इन जो थ्योरी में वो क्या है, घूमती रहनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होता। तो सिमिलरली मशीन में ये चीज होगी।
तो मुझे यहाँ से मुझे वो शेल मॉडल याद आ गया, वो जिसमें सर्कुलर शेल वाला जो होता था ना, वो
शेल मॉडल,
हाँ, वो सर्कल में घूमे जा रहा है लेकिन पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा,
एनर्जी लूज नहीं कर रहा, यस। तो वो हमें स्टार्टिंग में सिखाने के लिए बोलते हैं बस।
हाँ ना, तो वो बाद में धोखा हो गया,
उन्होंने जब होता है पता चलता है कि भाई ये तो सच ही नहीं था।
लेजर फिजिक्स में आया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे तो काम ही नहीं करता ये, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टिकल घूमे जा रहा है, वो एनर्जी गेन भी कर रहा है और लूज भी कर रहा है एट अ टाइम।
देखो,
न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स और एक्सेलरेटर फिजिक्स, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। एक्सेलरेटर फिजिक्स में क्या करते हो आप, पार्टिकल एक्सेलरेटर डिजाइन करते हो, फिर उनका बिल्ड करते हो, फिर उनकी पार्टिकल्स के अंदर की स्टडी करते हो कि वो मतलब पार्टिकल्स क्या फॉलो करेगा, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, उसको डिसिपेशन क्या होगा, कौन सी एनर्जी कहाँ जाएगी, और फिर उनको ऑपरेट करते हो, तो ये सब चीजें हो गई। तो पार्टिकल फिजिक्स वाले लोग क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स की अंदर की जो मतलब, जैसे मैंने बोला कि मैंने इलेक्ट्रॉन भी यूज की, तो इलेक्ट्रॉन बीम को लेट से प्रोटोन बीम के साथ मैंने कोलाइड करवाया, तो उनके जो नए पार्टिकल्स बनेंगे उनकी स्टडी करते हैं, वो होते हैं पार्टिकल फिजिसिस्ट। फिर आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वाले, जो जब मैंने ये इन दोनों को लेट से कोलाइड करवाया, तो एक इंटरनल उसमें मतलब न्यूक्लियस में क्या रिएक्शन हुआ, उसको स्टडी करने वालों को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। तो ये मतलब तीनों अलग अलग ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये पहले बात वही है कि किसी को स्कूल में, हमारे इंडिया में, जब पाकिस्तान में, आई गेस ये आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में अभी तक एक्सेलरेटर फिजिक्स का सीन नहीं है, लाइक एक्सेलरेटर फिजिक्स को
सीन है सब आए हुए।
तो वही चीजें क्या आए हुए एक्सेलरेटर फिजिक्स में, अभी तक उनको लोगों को ज्यादा पता ही नहीं है, इतने लोग नहीं, बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट्स में कुछ कुछ स्टार्ट हुआ है, हमारे पास एक्सेलरेटर्स हैं, मतलब छोटे छोटे एक्सेलरेटर्स हैं इंडिया में जो बहुत पुराने हैं, पर अभी तक नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहे, क्योंकि वही फंडिंग का प्रॉब्लम होता है। पर दूसरी चीज हमारे में ये थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे में जो थ्योरेटिकल के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब इंडिया में थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल मैथ्स में लोग, मतलब जो मैथमेटिक्स में हमारा काफी अच्छा है, तो हमारे इंस्टीट्यूट्स भी काफी अच्छे हैं। तो यूजली हम क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल लैब्स के साथ, मोस्टली हमारे हर इंटरनेशनल लैब्स के साथ कोलैबोरेशन हैं। तो क्या करते हो आप, अपना थ्योरी करते रहो, वहां जाके एक्सपेरिमेंट कर लो, जहाँ वहां से हम एक टॉपिक उठा लेते हैं कि भाई हम तुम्हारा ये कंपोनेंट का स्टडी करेंगे, ये करेंगे, वह करेंगे, तुम्हें डिजाइन बना के देंगे और तो ये चीज हम कर रहे हैं, मतलब इसमें काफी अच्छा है, तो यहाँ पे स्कोप है। तो ये भी किया जा सकता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट इतना फंड नहीं दे रही है आपको, जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आपके पास लोग नहीं है इतने काम करने के लिए, तो जितना आप कर सकते हो वो भी पॉसिबिलिटी है।
सही सही, शेरी शेरी इसके साथ यही डिस्कशन हो रही थी कि जितनी आपकी हैसियत, जितना कर सकते हो उतना तो करो, एटलीस्ट एक्सक्यूजेस देना, लेम एक्सक्यूजेस देना कि यार हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है और हमारे तो गवर्नमेंट ऐसी है, ये फलाना वलाना, तो इस तरह की चीज़ों से कुछ नहीं होगा। शेरी जाएगा, मुझे पता
यार वही वाली बात है ना, हमारे यहाँ मतलब मुझे इंडिया का इतना नहीं पता, लेकिन मैं पाकिस्तान के बारे में तो फॉर श्योर ये बात कर सकता हूँ, मतलब उनको सिर्फ गालियाँ देना आता है, इट्स सेल्फ मी, ये बस हम ब्लेम कर सकते हैं अपन, मतलब हम जो है ना सोच रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग या ऐसे इवेंट्स अपनी लाइफ के जिन पे हम ब्लेम डाल सकें और खुद कुछ ना करें। तो हमारे भी ऐसा ही है कि हमारे वाले जो है वो गवर्नमेंट पे ब्लेम डालते रहते हैं कि भाई फंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब मसला क्या होता है कि अगर वो खुद कुछ करना चाहे तो वो सिमुलेशंस पे बहुत कुछ कर सकते हैं, सिमुलेशन साइंस
हमारे पास इसमें यस तो बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर आप सॉफ्टवेयर, अब देखो मैं एक एग्जांपल दूंगी, जिस इंस्टीट्यूट में मैं जर्मनी में काम कर रही थी वहां का हमारा सॉफ्टवेयर है CST, कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, है ना फैजान, सही है ना ये?
हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी किया उस पे काम।
तो उसमें उसमें वो लोग क्या करते हैं कि वो मतलब एक सॉफ्टवेयर ऐसे ही हमारे एक प्रोफ थे वहां पे, उन्होंने दिया उसका थोड़ा सा, और वो अभी वन ऑफ द बहुत लाइक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, उसका एक साल का लाइसेंस पता नहीं 35,000-40,000 यूरो का है, ठीक है। अब वही चीज मेरे को पता है कि हमारे देसी लोगों में ये कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप देखो ना कंप्यूटर साइंस में काफी लोग अच्छे हैं, ठीक, तो वो चीज को हम अगर इम्प्लीमेंट करें, अगर चलो मैं तो बोलती हूँ कॉपी भी कर लो भाई, लाइक आइडिया कॉपी कर लो, अपना लिख लो, स्क्रिप्ट लिख लो, राइटिंग में अगर आप कर पाओ, उसका रेप्लिका बना पाओ, उसको उस लेवल पे पहुंचा पाओ, तो बहुत स्कोप है, तो बहुत चीजें हम अपना लाइक उसको बहुत सस्ते में उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आजकल तो मतलब हर चीज का आपको मिल जाएगा ना सोल्यूशन। तो वही चीज है कि एक्सक्यूज मारने से अच्छा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी चीजों को यूज करें, तो उनको प्रेजेंट करें इंटरनेशनली कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो तो ठीक है फर्स्ट स्टेप थोड़ी हर्डल होती है कि भाई आप पहली बार ही जाओगे किसी लैब के साथ जाके बोलोगे कि भाई मेरे पास ये आइडिया, तो मैं भी आपको वो भगा दें। पर अगर आपके पास नेटवर्किंग है, हमारे देसी लोग हर जगह पे बैठे हैं, अगर आप उनसे नेटवर्किंग करो, कहीं ना कहीं से घुसो, तो घुस के मतलब नेटवर्किंग करके देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उस चीज को एक्सप्लोर कर पाओगे, आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाओगे।
यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लाइक ऑफ द टॉपिक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि फंडामेंटल साइंसेस से रिलेटेड ये एक मुझे बात याद आई कि अभी टेराइड्स पे बहुत काम हो रहा है, टेराइड्स टेक्नोलॉजी पे। फैजान बिल्कुल कान खड़े हो गए फैजान के, क्योंकि फैजान को पता है टेराइड्स टेक्नोलॉजी 6G टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होगी।
एग्जैक्टली,
तो जो टेराइड्स टेक्नोलॉजी पे और टेराइड्स साइंसेस पे काम हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा लोग इंजीनियर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा फिजिसिस्ट हैं जो कि डायरेक्टली टेक्नोलॉजी में और 6G को डेवलप करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ मतलब ये जो स्ट्रगल है ना 2G 3G 4G इसके स्ट्रगल में फर्स्ट टाइम फिजिसिस्ट सबसे आगे हैं। तो मतलब अब वो एक पीरियड ऐसा आ गया है कि जो फंडामेंटल साइंसेस वाले लोग हैं उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो अब शेप कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली। अब वो सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं दे रहे, वो सिर्फ नेचर को नहीं बता रहे, अब वो टेक्नोलॉजी को इटसेल्फ शेप कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में ही, वो टेराहर्ट्ज डिटेक्शन पे ही काम कर रहे हैं, जैसे आपने वो लिक्विड वाली बात बताई थी ना एक्सेलरेटेड से, तो उनका कोलैबोरेशन भी एक्सेलरेटर फिजिक्स वालों के साथ है और वो टेबल टॉप डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, ताकि वो जो है ना जो स्कैनिंग सिस्टम है एयरपोर्ट का वो टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी पे डेवलप कर सकें, और उसमें कोई इंजीनियर नहीं है, सारे फिजिसिस्ट हैं।
इंजीनियर आ गया ना, मैं बताता हूँ
तो मतलब सिग्निफिकेंस ये है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियरिंग की सिग्निफिकेंस नहीं है, इंजीनियरिंग का जो काम है वो ये है कि किस तरह जो सॉल्यूशन मौजूद है फिजिक्स में उसको एज अ डिवाइस यूज करके आप मार्केट में लेके आओ, उसकी अपनी जगह सिग्निफिकेंस है। लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर कोई भी नेशन फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर पीछे जा रही है तो वो फिर बहुत ही पीछे चले जाएगी भाई।
बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं 100%
एग्री, ये सब चीजें पैरेलल ही चलती हैं, तो हर चीज का अपना एक स्कोप है। तो
बस मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि इंजीनियरिंग और मतलब ऑफ कोर्स साइंस के बगैर तो गुजारा है ही नहीं चीज़ों का, क्योंकि साइंस डेवलप होती है और साइंस की एक एवोल्यूशन होती है और टाइम लगता है चीज़ों में, चीज़ों को बनने में. जैसे फॉर एग्जांपल जो 50 साल पहले काम हुआ था उन चीज़ों को इंजीनियर्स अभी यूज़ करके सोसाइटी के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और इंजीनियर्स का नाम हो जाएगा कि उन्होंने इंजीनियर्स ने ये चीज़ बनाई है. तो इंजीनियर जो काम करता है उसका इमीडिएट इम्पैक्ट होने की वजह से लोग उसकी तरफ ज़्यादा कम्युनिकेशन की बात कर लूं तो शैनन का थ्योरम जो था कैपेसिटी का वो कब आया था पता नहीं 50-60 साल पहले. तो शैनन को क्रेडिट मिलना चाहिए.
नहीं मिलना चाहिए, क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा ना कि जो शैनन नाइक्विस्ट था, जो साइंटिस्ट दो थे जिनमें आज तक ये पंगा है कि किसने पहले दिया था,
वो तो अलग बात
है. तो शैनन नाइक्विस्ट जो है वो उनकी बेसिक फील्ड क्या थी? बेसिक फील्ड ऑफ स्टडी इंजीनियरिंग नहीं थी.
एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है, कि जो इंजीनियरिंग में लोग हैं वो इमीडिएट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीजों के बेसिस पे करते हैं जो साइंटिस्ट कर चुके हैं और जो थ्योरीज वो दे चुके हैं.
भाई मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, सामने जितने लोग जो देख रहे हैं भाई मुझे गालियां मत देना, मैं भी इंजीनियर ही हूँ भाई, मैं अभी भी फिजिक्स में आया हूँ, मैं दोनों साइड पे खेल रहा हूँ.
मैं चाहूंगा, वैसे भी टाइम थोड़ा हो गया तो मैं चाहूंगा कि आप अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें.
नहीं नहीं एक मिनट सॉरी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स से पहले
कैंसिल.
मुझे पता है टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन ये बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि मैंने ये पॉइंट मेंशन किया कि फिजिक्स वाले डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को शेप कर रहे हैं, तो एक्सेलरेटर फिजिक्स से क्या स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है?
एक्सेलेरेटर फिजिक्स से रिलेटेड एक्चुअली में स्टार्टअप हैं, अभी एग्जिस्टिंग भी हैं, ठीक है, काफ़ी. तो पहले तो लोग सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है वो है कैंसर थेरेपी पे काम करना. वो बहुत लाइक अभी दो तीन में मे भी कंपनीज के नाम बता भी सकती हूँ. एक वेरियंट मेडिकल सिस्टम है, एक IVA करके है, एक मतलब काफ़ी ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन लोगों ने ये काम इंडिविजुअली, बिकॉज एक डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओगे उसको एक किसी आम बंदे को पार्टिकल एक्सेलेटर दिखाओगे ना, अगला डर जाएगा कि ये क्या है, वायर्स ही वायर्स, मतलब ऐसे इतनी हमिंग आवाज उसमें ऐसे आवाज आती है, ठीक है, तो वो थोड़ा अगली दिखता है लेट्स से. तो एक डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भाई अपनी पढ़ के आया तो उसको नहीं ये देखना कि भाई इतना बड़ा पार्टिकल एक्सेलेटर में तुमने एफर्ट मारा है जो किया है, तो वो क्या देखना चाह रहा है कि उसको एक छोटा सा मशीन बना के दो, वो उसको पेशेंट में डाले रेडिएशन या जो भी बीम और उसको प्लग ऑन करे प्लग ऑफ करे, उसको ये मतलब है. मतलब जितना भी हम लोगों का अभी तक बात हुआ है डॉक्टर से या जो भी लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं तो हमेशा उनका यही पॉइंट होता है कि एक्सेलेरेटर फिजिक्स को यही बोलते हैं कि भाई तुम लोग कब बना के दोगे हमें कॉम्पैक्ट मशीन. तो उसपे वही है कि जब हमारे पास लेट से मैं किसी नेशनल लैब पे काम कर रही हूँ या किसी और लैब में काम कर रही हूँ, तो वहां पे हमारा जो मेन मुद्दा रहता है ये कि हम पार्टिकल एक्सेलेरेटर की उसकी, तो उसको ये हमारा
मेरे ख्याल में कनेक्शन थोड़ा सा
कैसी रिसर्च करते तुम लोग, इंटरनेट नहीं आया, 2020 हो गया.
हाँ मेरा इंटरनेट बहुत VPN यूज होते हैं, वही यहाँ पे अलग अलग बड़े अलग अलग वो यूज किए हुए हैं इन्होंने, सिक्योरिटी. तो दूसरा ये है कि आप क्या कर सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात है, तो इन सब चीजों को लाइक जो टेक्नोलॉजी हम लोग इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है अगर लैब्स में, तो आप ये सब का यूज करते हुए जो करंट टेक्नोलॉजी आती है तो उनको यूज करते हुए एक कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर बना सकते हो. मतलब ये कंपनीज कर भी रही हैं, ये बहुत बहुत इस पे काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि काम हो नहीं रहा. तो इस पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ये नहीं है कि आपको पूरा प्रोडक्ट ही बना के देना, तो उसके कंपोनेंट्स बना लो, उसके बहुत सारी स्टडीज होती हैं, आप उसकी सॉफ्टवेयर स्टडीज पे ही बना लो, उस पर भी कंपनीज हैं, उस पर भी स्टार्टअप आइडियाज हैं. तो ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में आपके भाई आप बेसिक साइंस में गए हो आप बोलोगे कि स्टार्टअप हो ही नहीं सकता. और जर्मनी में तो एक जर्मनी में भी कंपनी आ रही है मार्वल, ठीक है, उन्होंने मार्वल हमारा उससे उठा लिया, तो मैन को देख के, ठीक है, तो उन्होंने तो कंपनी है मार्वल, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी इस पर ही काम कर रहे हैं रिलेटेड टू समथिंग एक्सेलेरेटर फिजिक्स, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन पे कुछ कुछ कर दिया. तो ये लाइक बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज इससे निकल सकते हैं, इस फील्ड से, इवन मतलब सिर्फ इसी फील्ड से तो और फिजिक्स की ब्रांचेस से भी निकल सकते हैं. तो एक्सेलेरेटर फिजिक्स से डेफिनेटली मतलब मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, छोटे स्टार्टअप आइडियाज लेके आ सकते हो.
जबरदस्त, तो शेरी फिर इसको एंड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और आमना, अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स बच्चों के लिए, अपकमिंग साइंटिस्ट के लिए, अगर आपने कुछ बताना हो कुछ चीज।
मैं तो एज अ वुमेन सबसे पहला मेरा लोगों को रहता है वुमेन इन साइंस एम्पावरमेंट, ठीक है। तो वो चीज ये चीज है वुमेन मतलब कम है, तो बहुत सारी बंदियां गिव अप भी कर देती हैं, ठीक है। और मैं भी कभी कर देती है अगर मेरी फैमिली सपोर्ट ना होती, मेरे फ्रेंड्स सपोर्टिव ना होते, जब मेरे को बात से इंस्पिरेशन ना मिलती। मतलब बहुत इंस्पिरेशन की जरूरत है, लाइक इंस्पिरेशन जो है और एक सपोर्ट होती है। और बहुत सारी बार ये होता है कि आप कहीं प्रेजेंट कर रहे हो, लोग आके अब 50 बंदों के उसमें बैठे हो रूम में, आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो बहुत सारे बार लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। ये स्टार्टिंग में होता था, ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं किसी और बंदे से करूँ। इट्स नॉट लाइक देसी लोग, इट्स नॉट लाइक परदेसी लोग, सब जगह होता है, ये बहुत कॉमन चीज है। तो मैं यही बोलूंगी कि भाई साइंस को परस्यू करो, साइंस मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी लाइफ को एक मोटिव मिलता है, ठीक है। मैं तो इतनी इंस्पायर्ड हूँ, मुझे तो लगता है कि मेरा मोटिव है लाइफ का, तो मे बी आपके लिए भी ये हो सकता है। तो ये चीज पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो अगर आपको ये चीज कोई बोल रहा है ना कि भाई तुम लड़की हो तुम नहीं कर पाओगी, तो एज अ मैन ऑब्वियसली साइंस को परस्यू करो, बट अगर कोई ऐसा चीज ये कॉमेंट मार रहा है तो मे बी उसको बोलो कि भाई चपेट पड़ेगी। तो वो मारना सीखो और अपना करते रहो। और फैमिली सपोर्ट, आई थिंक सो, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वो ऑब्वियसली बहुत वन ऑफ द बेस्ट चीज होती है कि आपको एक वहां से सपोर्ट मिल रहा है, जो इंस्पिरेशन मिलता है। मतलब आई वाज ऑलवेज लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं तो कई बार जब बहुत बार, क्योंकि जब आप साइंटिस्ट होते हो बहुत बार आपके काम नहीं करती चीजें, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, 100 बार फेल हो गया, आपका आइडिया फेल हो गया। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार आइडिया चलते ही रहता है। तो मैं घर पे कॉल करती हूँ, बोलती हूँ यार मैं तो साइंस छोड़ रही हूँ। मेरे पापा बोलते हैं अपनी शक्ल शीशे में देख खड़े होके, और क्या कुछ नहीं किया तूने यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब तू बोल रही है गिव अप करूंगी। तो वो चीज मतलब एक छोटा सा आपको बाहर से एक फोर्स चाहिए होता है लोगों से, तो आप वो चीज कर सकते हो। मतलब मेरा रिमार्क यही था।
जबरदस्त, नहीं बहुत बहुत अच्छी बात की है, और हमारे मुल्क में बहुत रिलेट कर सकते हैं लोग इस चीज को, खासतौर पे जो है वो लड़कियां। तो शेरी तुम कुछ बोलना चाहोगे फाइनली?
मैं ये बोलना चाहूंगा थैंक यू इस रिमार्क्स के लिए, हमें पॉडकास्ट नंबर 2 विद डॉक्टर आमना का टॉपिक मिल गया है।
हमेशा ये चीज बोलती हूँ ना कि भाई ये वुमेन की चॉइस होती है आगे तक जाना, बट आई नो इट्स अ चॉइस, आपको एक वो चीज चाहिए। बट दूसरी चीज ये भी रहती है कि आपकी सपोर्ट कितनी है। लोग बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको मतलब दिमाग का मैसअप करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई तुम्हें मे बी रियलाइज भी कराएंगे कि तुम अच्छे नहीं हो इस पॉइंट पे। मैं इंडिया से जर्मनी आई थी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी, मैं सच बताऊं 3-4 महीना की। मैं और मेरे ग्रेजुएट स्कूल में सिर्फ मैं ही एक बंदी थी अकेले, तो बाकी सब लोग वो थे, तो मेरे को लगता था कि ये मेरे को सीरियस ही नहीं ले रहे। तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके एक बार, मतलब वो लगता है वो आपको खुद से फील होगा, एक इंस्टिंक्ट होगी। तो बट आफ्टर सम पॉइंट मे बी आप लोग के लिए भी चिल हो जाता है जब आपको उनको प्रूफ करके देते हो कि भाई हाँ तुम कर सकते हो ये चीज। तो वो चीज पॉसिबिलिटी है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई करो आप हार्डवर्क हमेशा पे करता है, तो मेरा पॉइंट हमेशा यही रहता है।
जबरदस्त। तो फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही कंक्लूड करेंगे।
मेरा भी पॉइंट है, मतलब भाई यार लड़कियां ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग में आओ, इंजीनियरिंग वाले लड़कों का क्या कसूर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ते उन बिचारों का क्या कसूर है, सब लड़कियां बीबीए भी चले जाएंगी यार, की ये गलत बात है। खास करके बिचारे ये मैकेनिकल वालों के साथ बहुत ज्यादती होती है।
तुम लोग की वजह से नहीं आती, वो तुम जैसे
मैकेनिकल वालों के साथ बहुत ज्यादती है यार, उधर कोई लड़कियां नहीं आती भाई, लड़कियां मैकेनिकल में जानी चाहिए।
ये सारी बातें अभी कर लोगे तो अगले पॉडकास्ट में क्या करेंगे।
ठीक है यार, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, मतलब मुझे अच्छा लगा कि मैं आई। और फैजान तो मतलब ऑब्वियसली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और शेरी भी अच्छा दोस्त है, तो आएंगे क्या अलग उसमें।
तो बस अब मैं जो है ना इस चीज को खत्म काम की तरफ लेके जाएंगे, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है, मैं खुद टकमगा गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक आपकी यूनिवर्स का एक हाफ है, मतलब हाफ से भी ज़्यादा है बल्कि, और किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर अगर आप चाहते हैं वो मुल्क डेवलप हो, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ के ऊपर एक पॉडकास्ट होगा, अभी से अनाउंस कर देते हैं और जल्द होगा। और उसके अलावा मैं एक चीज़ जल्दी से कंक्लूजन में ये करना चाहूँगा कि इंजीनियर्स का जो इम्पैक्ट है वो मैंने बता दिया कि इमीडिएट होता है, लेकिन इंजीनियर्स का नाम कोई याद नहीं रखता, साइंटिस्ट का नाम सब याद रखते हैं। तो इसी बात पे मैं खत्म करूंगा।
नहीं भाई, गलत बात कर रहे हो, खत्म नहीं करने यानी खत्म नहीं करने दूंगा मैं, ये गलत बात करके जा रहे हो। तो
इसी चीज पे मैं जो है वो पॉडकास्ट को खत्म करता हूँ। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।
लव यू।
लव यू। बाय।